भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। भगवान शोभा के समुद्र है, अक्षय आकर अनंत सौंदर्य निकल रहा था। तो भगवान को इस रूप में कौशल्या माता देखती, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी केही विधि कर अनंता माया गुण ज्ञान तीत यमाना वेद पुराण भनंता। दोनों हाथ जोड़ करके माँ अपने बच्चे से प्रार्थना करती है, क्या कभी संसार में ऐसा हुआ है, आज ही बच्चा अभी 2 मिनट पहले प्रकट हुआ और उसके पैर पर गिर रही है मैं। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंत, हे अनंत मैं आपकी क्या स्तुति करूं। भगवान उसने प्रकट हुए तो थोड़े बड़े रूप में प्रकट हुए, बच्चा ही थे लेकिन बिल्कुल शिशु नहीं, तो मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है आपके गुणों को कहने के। वास्तव में आप माया के गुणों से परे हैं, माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो आप सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे हैं, मतलब गुणातीत दिव्य है चिन्मय। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, माया के गुणों से आप अतीत, इंद्रियों के अनुभव से आप अतीत और आप अपरिच्छिन्न है, अमान है, आपको मापा नहीं जा सकता, आप किसी देश में काल में बाधित नहीं है। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण भनंता, जो वेद पुराण भनंता, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि आपका सब कुछ है, अनंत है, चिन्मय है, दिव्य है। इससे सिद्ध हुआ कि कौशल्या जी बहुत ही वेद पुराण सुनी थी, ये पढ़ी भी होंगी। तब तो कह रहे कि वेद पुराण कहते हैं कि आप चिन्मय हैं, दिव्य हैं, तो इससे प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वो वेद शास्त्र पढ़े। आजकल वेद शास्त्र पढ़ने का मतलब है वेद का फल भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, वेद का ही निष्कर्ष है। वेद शब्द आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ओरिजिनल वेद पढ़ेंगे, एक शब्द समझ में नहीं आएगा। लेकिन वेद की व्याख्या जो पुराणों में की गई है और श्रीमद् भागवतों में सारांश दिया गया है, तो ये कहा जाए कि वेद शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो उसका अर्थ है भागवत और भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उसका यही अर्थ होता है। माता कौशल्या भगवान के रूप गुण लीला आदि को खूब सुनी थी, ऋषियों के यहाँ नैमिषारण्य में पूर्व जन्म में सुने थे, इस जन्म में भी सुनते रहते थे। पहले के लोगों का यह सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे दीर्घ काल तक चलने वाला काम होता था भगवान की बातें सुनना, आयोजन नहीं करना पड़ता था उनको, 10 दिन का या 1 महीने का 2 दिन का आयोजन नहीं, वो तो रोज ही आयोजन ही आयोजन उनका रहता था, सुनते रहते थे, स्त्रियां भी सुनती थी। सो मम हित लागी जनय अनुरागी प्रकट भयो श्रीकंत, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गा वही श्रुति संता। जो करुणा के सागर हैं, सौंदर्य के सागर हैं, अर्थात जिनमें अनंत करुणा है, अनंत सौंदर्य है, और वेद और संत जिनका गुण गाते हैं, वे प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए। वास्तव में तो आप लक्ष्मीकांत हैं, आप श्रीकांत हैं, लक्ष्मी जी के भी पति हैं, आपका कोई जन्म नहीं है, आपकी कौन माँ हो सकती है, आपका कौन पिता हो सकता है, लेकिन आप मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार करके और मेरे गर्भ से प्रकट हुए। लेकिन एक बात के लिए माँ कौशल्या भगवान से कह रही है कि इसको दूसरे लोग नहीं मानेंगे कि आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए, और मैं तो देखी हूँ कि इतना दिन गर्भ में रहे आज प्रकट हुए, कैसे नहीं लोग मानेंगे। तो इसी विकल्प का, इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए माँ कौशल्या कहती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति ठिर नल है। माया के द्वारा रचे हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके एक रोम कूप में रहते हैं। हमारे जो शरीर है उसमें जो रोए जमे हुए हैं तो आप देखेंगे वो छोटा सा गड्ढा जैसा होता है, उसको रोम कूप कहते हैं। रोम कूप है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो भगवान के एक रोम कूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अट गए हैं, रहते हैं। तो जिसके एक रोम कूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अटा हुआ है वो भगवान किसी स्त्री के गर्भ में कैसे अटेगा? ये संभव कैसे हो सकता है, जरा विचार कीजिए। परंतु माँ कौशल्या तो प्रत्यक्ष देखी है, गर्भ में रहे फिर प्रकट हुए। तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। अनंत अनंत ब्रह्मांड आपके एक एक रोम कूप में रहते हैं। सो ममौर वासी, ऐसे प्रभु मेरे उदर में रहे यह उपहास यदि मैं कहूंगी लोक में कि भगवान हमारे हृदय में हमारे उदर में आए हैं तो मुनि लोग हंसेंगे, अरे पगली ये क्या बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों कह रही हो। माँ कौशल्या भगवान से ही बात कर रही है कि धीर मति थिर न लाए। यहाँ पर जिनकी बुद्धि में धैर्य है, जो बहुत अनुभवी है, वेद शास्त्र पढ़े हैं, वे लोग भी इस बात को नहीं मानेंगे। एक ब्रह्मांड में कितने कितने लोक हैं और स्थान है आप देख रहे हैं। केवल बंबई किसी के शरीर में अट जाए तो क्या वो व्यक्ति किसी माता के उदर में अट सकता है? फिर कैसे अटेगा? लेकिन भगवान की विचित्र लीला है। गीता में भगवान कहते हैं ये सारा जगत मेरे भीतर है, और फिर कहते हैं मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। यह कोई विचित्र बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं तो हम इस मंदिर के भीतर बैठे हैं, परंतु हम मन से देख रहे हैं पूरे बंबई को या हिमालय पर्वत को देख रहे हैं, समुद्र को भी बहुत दूर तक देख रहे हैं। तो हमारे मन में अटा हुआ है ना, हमारे मन में जितना भी हम सोच रहे हैं वो सब अटा हुआ है, समाया हुआ है, और मन शरीर के भीतर है। मन में सारा संसार है और मन शरीर के भीतर देख रहे हो। शरीर से बाहर भी है, शरीर के भीतर भी है। जब मन इस तरह से हो सकता है, मन सब में समाया हुआ है और मन से सब अलग भी है, तो मन से भी सुपीरियर बुद्धि है, बुद्धि से भी सुपीरियर आत्मा है, आत्मा से बहुत सुपीरियर परमात्मा है। तो परमात्मा में क्यों नहीं संसार रह सकता है, इसके साथ नहीं भी है, दोनों बात फैक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक ही श्लोक में भगवान इस बात को कहते, मतस्थानी सर्वभूतानि नच मतस्थानी भूतानि, भगवान कहते हैं। तो अर्जुन चकित हो गए, कैसी विपरीत बात बोल रहे हैं। एक बार कहते हैं सब कुछ मेरे भीतर है और एक बार कहते हैं कुछ भी मेरे भीतर नहीं है। तो भगवान कहते हैं पश्य मे योगमहेश्वरम, जरा बुद्धि लगाओ, बुद्धि विचार करो मैं कौन हूँ। मेरे ऐश्वर्य योग को देखो, देखने का मतलब जरा विचार करो मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार से जिन प्रभु के एक एक रोम कूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड समा सकता है, वे प्रभु माता कौशल्या के कोख में उदर में समाये, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु कुछ लोग तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, यह उपहास ही। यदि मैं ऐसा कहूंगी कि भगवान हमारे पुत्र बने हमारे गर्भ में आए तो लोग हम पर हंसेंगे, क्या रे सपना देख रही हो, पागल बन गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब हुआ है। यह जो पद है ऐसा स्पष्ट लगता है कि श्रीमद् भागवतम के ही श्लोक का अनुवाद है। माता देवकी ने भगवान से कह दिया प्रकट होने पर कि आप जल्दी से जल्दी इस रूप को छिपा लीजिए, विष्णु रूप को आप छिपा लीजिए, यहाँ तक कि आप अपने रूप को अदृश्य कर दीजिए। तो भगवान ने कह दिया कि माँ तुम क्यों मुझे छिपने के लिए कह रही हो? उसने कह दिया कि इस बात का पता न लगे कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए, नहीं तो कंस आपको मारेगा। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं। तो जैसे पहले आप अदृश्य थे, वैसे आप फिर अदृश्य हो जाइए, कहीं चले जाइए। तो भगवान ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया हूं, इसके कारण तुम मेरी माँ कही जाओगी, तुम्हारी बहुत प्रशंसा संसार में होगी, आत्मश्लाघा, तुम्हारी श्लाघा होगी, बड़ाई होगी, मुझे इसी तरह रहने दो। तो माता देवकी कहती है, मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे बड़ाई नहीं चाहिए, बल्कि मेरी बहुत भारी हंसी होगी यदि मैं कहूंगी कि आप हमारे गर्भ से जन्म लिए हैं, तो सब लोग कहेंगे कि देवकी झूठ बोलना चालू कर दी। हमारी प्रशंसा नहीं होगी, सब लोग हमको झूठी कहेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। सगर्भ गोत भूत हो और निर्लोक से विनम नम ही तब, लोग तो विश्वास नहीं करेंगे कि आप हमारे गर्भ में आए। ऐसे आज भी विचार चलता है कि भगवान वास्तव में गर्भ में आते हैं कि नहीं। कुछ वैष्णव लोग भी कह देते हैं, नहीं नहीं वो तो केवल देखने भर के लिए होता है, भगवान गर्भ में नहीं आते। क्यों, भगवान गर्भ में नहीं आ सकते हैं क्या? जब परमात्मा रूप से सबके हृदय में है ही, तो गर्भ में रहना कौन उनके लिए मुश्किल काम है। जहां भगवान आते हैं वहां धाम पहले बन जाता है भगवान का। जैसे सूरज कहीं जाएगा तो उसके चारों तरफ आलोक आलोक प्रकाश प्रकाश पहले भर जाता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य जाकर किसी अंधकारमय कोठरी में बंद हो जाएगा, उसको कोई कैद कर लेगा। कोई कर सकता है ऐसा? किसी कोठरी में अंधकार भरा हुआ है और किसी दुर्बुद्धि के मन में यह बात हो कि सूर्य को इस अंधकार के भीतर बंद करो, तो सूर्य के आने के समय ही अनंत दूर तक तो प्रकाश पहले ही छा जाएगा, अंधकार क्या रह सकता। देखने में माँ देवकी का हृदय पेट प्राकृत लग रहा है, लेकिन वह भगवान की जननी है, कौशल्या भगवान की जननी, इसलिए भगवान का धाम पहले ही उसके उदर में आविर्भूत हो जाता है। भगवान अपने धाम में ही निवास करते हैं, वास्तव में भगवान गर्भ में आते हैं, यह सिद्धांत है। इसीलिए तो बार बार बात कही जाती है, देवकी नंदन, देवकी तनय, कौशल्या नंदन, भगवान पुत्र बने। अच्छा, यदि भगवान गर्भ में न आवे, मान लीजिए कोई बच्चा गर्भ में न आवे, तो स्तन में दूध भी नहीं आ सकता है। भगवान जब गर्भ में आए तब तो माता कौशल्या के स्तनों में दूध भर गया उनके पीने के लिए, ये सब प्रमाण है कि भगवान गर्भ में आते हैं। परंतु भगवान का गर्भ में आना कुछ और है। कौशल्या जी कहते हैं कि लोग हंसी उड़ाएंगे, कैसे संभव है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विद की न चाहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम। तो जब माँ को यह तत्व ज्ञान हो गया कि ये भगवान है, मान रही है, भगवान मानने लगी, तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब माता देवकी को, माता कौशल्या को जब ज्ञान हुआ, भगवान हंसने लगे, क्योंकि भगवान तो बाल चरित करना चाहते थे। तो कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लह, तो भगवान कथा कहने लगे माँ के विषय में और अपने पिता के विषय में, आप पूर्व जन्म में ऐसे थे, ये थे, और ऐसी बात कहने लगे जिससे कि माँ के हृदय में सुत प्रेम लह, पुत्र भाव उत्पन्न हो, वात्सल्य भाव हो। तब माता की वह मति जो तत्वज्ञान की थी, भगवान को भगवान समझ गई थी, वो डोल गई। माता पुनि बोली सो मति डोली, अब पहली मति डोल गई। माता पुनि बोली सो मति डोली, तज तात यह रूपा। माता को सल्ले कहती है कि बेटा, तात शब्द का अर्थ पुत्र, पुत्र यह रूप छोड़ दो, तुम द्विभुज हो जाओ। तज तात यह रूपा का अर्थ है कि ये शंख चक्र हटाओ और चार भुजा मत धारण करो, दो भुजा में हो जाओ, बच्चा बन जाओ, जिससे मैं तुमको गोद में खिलाऊंगा। मैं भगवान को कैसे गोद में लूं, कौशल्या जी कह रही। तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला, शिशु लीला कीजिए। तजहु तात यह रूपा, तो आप बच्चा बन जाइए, और बच्चा बन जाइए का अर्थ इतना ही नहीं था, केवल आकार बदल लीजिए, बच्चा हो जाइए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक स्वरूप। तो भगवान ने वचन अपनी माँ की सुने तो चतुर्भुज रूप छिपा लिए, द्विभुज हो गए, और द्विभुज बन करके जैसे जन्म लेने पर बच्चे रोने लगते हैं वैसे रोने। यह भगवान की विचित्रता है। बच्चा से तो छोड़ दीजिए, इस समय एकदम सयाना से ज्ञानी आदमी से कहिए कि जरा बच्चा हो जाइए, आप हो सकता है बच्चा? भगवान तो उसी शरीर से जब चाहे जैसे हो सकते हैं। चतुर्भुज रूप के देखते देखते द्विभुज हो गए, और जो पहले माँ को ज्ञानोपदेश कर रहे थे, बहुत बात बता रहे थे, वे बच्चा होकर के रोने लगे। तो रोने लगा बच्चा तो फिर उसको उठाकर दूध पिलाना, और भी जात कर्म जो है जन्म लेने पर जो क्रियाएं की जाती है वो सब की जाने लगी। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, और साधारण रोवाई नहीं रोने लगे राम, रोदन ठाना रोने लगे, क्या क्या करके बच्चे जैसे रोते। यह है भगवान की लीला माधुरी, माँ के भाव के अनुसार भगवान कर रहे। वास्तव में भगवान अपने भक्तों के वश में, माँ ने कहा बच्चा हो जाए लीला कीजिए तो भगवान वैसे हो गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होइबा लक सुर भूपा, और यही सुख है उन लोगों को मिलेगा जो लोग इस लीला को गाते और सुनते हैं। यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परही भव कृपा। इस चरित को जो लोग गाते हैं सुनते हैं वे कभी भी संसार कुएं में नहीं गिरेंगे, संसार समुद्र में नहीं गिरेंगे, वह भी वही जाएंगे जहां भगवान श्री राम रहते हैं। और चाहे तो कौशल्या के भाव से उनकी बाल लीला का आनंद ले सकते। विप्रधेन सुर संत लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण पृथ्वी देवता गौओं की रक्षा के लिए भगवान ने अपना मनुष्य श्री विग्रह प्रकट किया। वास्तव में यह भगवान का शरीर माया के गुणों से और इंद्रियों से परे, निज इच्छा निर्मित भगवान अपनी इच्छा से अपना स्वरूप प्रकट किए, प्रकृति ने उनका शरीर नहीं बनाया। तो इस प्रकार आज के दिन भगवान प्रकट हुए अयोध्या में। अब भगवान के प्रकट होने के बाद अयोध्या में गह गह बधाइयां बजने लगी चारों तरफ। कैसे पता चला कि बच्चा जन्म लिया है? जब बच्चा रोने लगा तब खबर फैल गई, जन्म ले लिया, जन्म ले लिया। कभी कभी लोग बाहर घर के रहते हैं, मान लीजिए प्रसव गृह है, उसे माता है, तो बाहर पता लगता है तभी जब बच्चा रोता है। इसका अर्थ है कि जन्म के समय रोना है ही बच्चे को, कोई रूटीन से नहीं रो रहा है, दुख से रोता है बच्चे। बच्चे को जन्म के समय बड़ा दुख होता है इसलिए वो रोता रहता है। कोई कोई ऐसे हुए हैं जो हंसते हुए जन्म लिए, प्राय सब रोते हुए जन्म लिए। कवि ने लिखा है कि कबीरदास जी ने लिखा है, जब हम इस संसार में पैदा हुए तो घर के लोग थाली पीट रहे थे, बाजा बजा रहे थे, खुशी में थे, हंस रहे थे, और जिसका जन्म हुआ है वो रोता रहा। जो जन्म लिया है वो रो रहा है, और घर के बाहरी लोग उसका तो दुख समझते नहीं है, वो लोग खुशी में नाचते हैं। तो ऐसी करनी कर चलो कि हम भी हंसे जग रोए। तो ऐसी करनी करनी चाहिए कि हम हंसते हुए भगवान के धाम में जाएं और फिर विरह में दूसरे लोग रो, ऐसा होना चाहिए। आए तो सब लोग रोते हुए आए। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने माँ के गर्भ से जन्म लिए तो वे राम राम शब्द बोलते हुए जन्म लिए, इसलिए उनका नाम था बचपन में राम बोला। यही नाम प्रसिद्ध था, राम बोला। बाद में उनका नाम तुलसीदास जी उनके गुरु ने दिया था, उनका प्रसिद्ध नाम है राम बोला। कई जगह एक घटनाएं सुनने को मिलती है लिखी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी जब घर छोड़ दिए थे, अपनी पत्नी के कहने से उनको वैराग्य हो गया था, रत्ना नाम था उसको, रत्नावली जी का, तो जब चले गए थे बहुत काल के बाद रामायण लिखने के बाद, एक दिन उनकी इच्छा हुई कि चलूं जरा अपने जन्मभूमि पर। तो उनका एक दोहा है, इस दोहे के बल से इस बात को कहा जाता है, तुलसीदास जी का एक दोहा है, तहां न कबहू जाइए जहां जन्म को ठाव भाव भेद जाने नहीं धरत पाछिलो नाम। कोई साधु हो गया विरक्त हो गया तो उसको अपने जन्म स्थान पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग वही पहला नाम बोलते हैं जो बचपन में वहां रखा गया, और उस स्वामी को स्वामी थोड़े लगाएंगे जो पहला स्कूल में नाम रहता है, चाहे वही पूछते हैं का हो का हालचाल पूछते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी गए तो गांव में प्रवेश अभी नहीं किए, उनकी पत्नी उस गांव में थी और परिवार के और लोग भी थे, लेकिन गांव से बाहर एक जगह पर एक बुढ़िया माता जी रहती थी, वो चावल चना आदि भूंजा करती थी बाहर गांव से। तो जाड़ा का महीना था, तुलसीदास जी गए, अब तो साधु वेश में थे बिल्कुल वैष्णव वेश में, तो गए तो रुके, रात में वहां वे पहुंचे थे तो दाना भूंज रही थी तो आग तापने लगे जाड़ा में, तो माता जी पहचान गई उनको तुलसीदास जी को, तो उधर के लोकल भाषा में कही के बचवा राम बोला वा तुलसीदास जी तो वहां से भाग गए अब अयोध्या करे बाप रे बाप ये राम बोलवा नाम कह रहे फिर घर नहीं गए दूसरी जगह लोग वैष्णव समझते हैं आदर करते हैं भक्त के रूप में ख्याति, और वहां जाकर कोई राम बोलवा और ये गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं रोए थे, वे राम राम बोलते हुए जन्म लिए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु हरि हरि कहते हुए अवतार लिए थे। कुछ ऐसे लोग हैं विलक्षण, लेकिन हम लोग तो हाय हाय करते जन्म रोते हुए जन्म लिए। कदाचित किसी को विश्वास न हो और कहीं उसका कोई टेप रिकॉर्ड किया होगा तो बचपन में कैसे रो रहे थे सब पता चल जाएगा, रिकॉर्डर हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो जो भी हो ये दशा भगवान भी ये लीला करने लगे रोने लगे। इस लीला को जो गाते हैं सुनते हैं भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं वे कभी भी संसार बंधन में नहीं पड़े। भगवान का जन्मोत्सव मनाना भगवान का बहुत बड़ा आदर करना है। हम लोग इस मनुष्य शरीर में पता नहीं किसका किसका कितना आदर किए हैं, किसको मान दिए, लेकिन जीवन में सबसे अधिक मान भगवान को देना चाहिए। तो इसे हरे कृष्ण मंदिर के भक्तों ने जो ये आयोजन किया है बहुत अच्छा है, प्राय प्रत्येक मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जाता है सारी दुनिया में, और इस अवसर पर जो राम कथा का आयोजन किया गया यह बहुत अच्छा हुआ है, आप लोगों ने हमको गौरव दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे एक अवसर मिला जीवन में प्रथम बार रामनवमी के अवसर पर जब मैं इतने देर तक भगवान राम के साथ रहा, भगवान राम के गुणों का वर्णन किया। वैसे तो भगवान के गुण अनंत हैं, बहुत ग्रंथ इस पृथ्वी पर हैं, परंतु हम लोगों की बुद्धि बिल्कुल अल्प है, एक तो उसे पढ़ने का भी समय नहीं रहता है, पढ़ने पर बुद्धि भी ग्रहण बहुत कम कर पाती है, और जितनी ग्रहण करती है उतना बाद में भी याद नहीं रहता, और जितना याद रहता है उतना कह भी नहीं सकते सब तरह से कमी कमी। तो जन्मोत्सव में भगवान के गुणों का वर्णन करना सुनना यह उत्सव का एक अभिन्न अंग है। तो इस हरे कृष्ण मंदिर ने इस काम को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, और यही है प्रतिदान। आप सभी बॉम्बे के भक्त या कंग्रेगेशन जो भी मंदिर को सहायता करते रहते हैं, मंदिर आपको भगवान की कथा दे रहा है, भगवान का जन्मोत्सव दे रहा है, तो यह बहुत बड़ा दान है, इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। जब भी कोई उत्सव हो तो हृदय खोलकर भाग लेना चाहिए, जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, और वैसे साप्ताहिक फेस्टिवल तो संडे का चलता ही रहता है। ये समझना चाहिए कि हम किसी उत्सव में भाग ले रहे हैं तो हम भगवान का आदर कर रहे हैं। जैसे कोई दुल्हा जा रहा है, वर जा रहा है और बारात में आप हो लिए तो वो दुल्हा का आदर माना जाएगा, केवल चल दिए तब भी वो खुश रहता है कि हमारे बारात में आए थे। तो जगन्नाथ जी भगवान श्री राम प्रसन्न होंगे कि हमारे जन्मोत्सव में भाग लिया था। यह हम लोगों का धर्म है भगवान का प्रचार करना, भगवान के जन्म दिवस पर जुटना, भगवान के रथ यात्रा में जुटना। इतना भगवान को आकर्षक प्रस्तुत करना चाहिए लोग में कि सब लोग अपना अपना मत छोड़ करके राम के भक्त हो जाए। यह हम भक्तों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी, इस्कान के भक्तों पर, अपनी जिम्मेवारी को हम लोग अधिक से अधिक समझें और भगवान का प्रचार करने में सफल बने, यही भगवान श्री राम के चरण कमलों में हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्ण, जय श्री राम। अंत तक भगवान यहाँ रहते हैं। तो रावण सीता जी का हरण कर लिया था और भगवान ने सीता जी के विरह में सीता जी का अन्वेषण करते हुए चल रहे थे। पर्वत की कंदरा में घुसते थे, पूछते थे नाम रखकर नदी के किनारे। और तो और बहुत भारी आश्चर्य होता है कि भगवान पेड़ से पूछ रहे थे, झाड़ से पूछते थे, हिरण से पूछते थे, पत्थर से पूछते थे, नदी से पूछते थे। पूछत चले लता और पाती, लता से, पत्ता से, वृक्ष से, कीट पतंग से, जानवर से पूछते जाते हैं, तुमने सीता को देखा है? सीता को देखा? और खूब रो रहे थे। तो इतना पागल तो आज भी कोई नहीं होगा, कितना भी किसी से प्रेम करे और वो चली जाए कहीं, तो आदमी से भले पूछेगा कि कहाँ गई, लेकिन जड़ पदार्थ से तो नहीं पूछेगा, टेबल से थोड़े पूछेगा कि तुमने मेरी प्रेयसी को देखा है नहीं देखा है। इन भगवान की यह अद्भुत एक लीला हुई, जो सर्वज्ञ भगवान है सब कुछ, और उनके प्लान से ही सीता का हरण किया गया था। भगवान ने कहा था कि तुम अग्नि में निवास करो और अपना एक नकली रूप यहाँ छोड़ दो जिसको रावण हरेगा, और मैं बहाना बना करके राक्षसों का नाश करना चाहता हूँ, ये कथा है। तो रावण असली सीता जी का हरण नहीं किया था। चैतन्य चरितामृत में भी एक कथा है, कूर्म पुराण का उद्धरण चैतन्य महाप्रभु देते। तो भगवान की योजना से सीता का हरण हुआ, लेकिन ऐसा विलाप भगवान ने किया ऐसा कि देख करके सती का दिमाग कुछ और हो गया। भगवान शिव देखे तो प्रणाम करने लगे, दूर से निकट नहीं आए, क्योंकि निकट जाने पर हल्ला हो जाता कि ये भगवान है, शिव जी इनका दर्शन करने आए थे। तो शिव जी दूर से प्रणाम किए और कही सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। कामदेव के बैरी भगवान शिव ने कहा जय सच्चिदानंद। भगवान रो रहे थे परंतु शिव जी तो समझ रहे थे कि ये भगवान की लीला है। उनकी पत्नी सती जी देखी इस राजा के लड़के को ये सच्चिदानंद ब्रह्म कहकर के शिव जी प्रणाम करते हैं, ये क्या हो गया, क्या बात। सोचने लगे कि ये जो लड़का है खोज रहा है अपनी पत्नी को, ये निश्चित भगवान नहीं है। यदि भगवान विष्णु का अवतार होता तो विष्णु भगवान भी तो सर्वज्ञ हैं, वे क्यों खोजेंगे। सती जी इस तरह मन में तर्क करने लगी, लेकिन उनका गिरा हुआ चेहरा देखकर भगवान शिव ने पूछा कि सती देखो तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, इस प्रकार की शंका भगवान की लीला पर मत करो। अभी अभी जिनकी कथा सुनने के लिए हम लोग गए थे वही प्रभु अवतार लिए हैं, ये भगवान है, इनको मनुष्य मत समझो। लेकिन सती जी ने वो रोते बिलखते हुए देखा था भगवान को, तो उनके मन पर ऐसा असर हो गया, वो कहे नहीं 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 नहीं, यद्यपि कहे सिर बात शिव बार बहु। सती जी के मन में विश्वास ही नहीं हुआ जबकि वक्ता शिव जी थे और उनकी खास अपनी अर्धांगिनी पत्नी उसको समझा रहे थे कि ये भगवान है, भगवान है, समझो यही परब्रह्म है, परमात्मा है, लीला कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ। तो शिव जी ने यहां तक कह दिया कि यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो कि वो भगवान है कि राजकुमार। तब वो प्रसन्न हो गए कि हाँ, लेकिन उसने कहा कि मैं परीक्षा लेने जाऊंगी और आप कैलाश पहुंच जाएंगे तो क्या मैं अकेले जाऊंगी फिर। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं यहीं पर बैठ करके रहता हूँ, ये बरगद का वृक्ष है, तब लग बैठ यहाँ बट छाही, जब लग तुम आए हो वहीं पाए, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी यहाँ मैं बैठ कर रहूंगा, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो चली गई भगवान की परीक्षा लेने के लिए। भगवान जो रो रो करके सीता को खोज रहे थे उस क्षेत्र में पहुंच, और भगवान शिव समझ गए कि राम का कोई विशेष प्लान है, तभी सती को ज्ञान नहीं हो रहा है, नहीं तो इतनी विदुषी स्त्री को क्यों नहीं ज्ञान हो जाता। मोरे कहे न संशय जाए, मेरे कहने पर भी संशय नहीं जा रहा है, लगता है भगवान की कोई विशिष्ट योजना है। तो अस कही लगे जपन हरिनामा, वो बैठ करके अपना नाम पूरा करने लगे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे,
जो होगा सो देखा जाएगा। आप देखें क्या पत्नी की दशा होती है। तो पति की बात नहीं मानी, अब लगी राम की परीक्षा ले। भगवान यानी गरुण जी का भुसुंडी जी कहते हैं वहां पर कि जैसे चींटी समुद्र का थाह लेने चले, वैसे सती जी का दिमाग पागल हो गया, राम की परीक्षा लेने चले। तो बार बार विचार करके सती ने परीक्षा का पेपर क्या तैयार किया, अपने को सीता का रूप बनाया। तो परम सुंदरी है ही, और सीता की जैसी साड़ी थी, जैसा मेकअप था, जैसे थी, अपने को तुरंत कर ली। तो सती जी ने सोचा कि यदि ये राजकुमार होगा, मनुष्य होगा, तो मुझको सीता समझ करके कहेगा, आ मेरी सीता मिल गई, मैं तो रो करके मर गया, कहाँ छिपी थी, कहाँ ये थी। सती जी ने ये सोचा, तो सती जी सीता बन गई थी और चली उस पथ से जिधर से भगवान राम रोते हुए लक्ष्मण जी के साथ आ रहे। भगवान तो भगवान है, उन्होंने देखा और देखते ही समझ गए कि ओ सती जी ने अब दूसरा मेकअप कर लिया है। भगवान से भूल नहीं हो सकती। तो भगवान गए और चरण छूकर प्रणाम किए। अब तो प्रणाम करते ही सती का तो होश हवास उड़ गया, भगवान मनुष्य लीला कर रहे थे। ये अभी नहीं कहते हैं कि हम भगवान हैं, परंतु ये कैसे जान गए कि ये सती है, सीता नहीं है। प्रणाम किए और प्रणाम करके प्रश्न कर दिए, पूछे बहुरी कहाँ दृश्य के तु, विपिन अकेली फिर हूं कही हेतु। भगवान ने पूछ दिया कि वो वृषकेतु जी कहाँ है, मतलब आपके हस्बैंड जी कहाँ है, आपके पति जी कहाँ है, क्या बात है कि अकेले वन में घूम रही हैं। यह एक व्यंग था भगवान का, पत्नी को अकेले नहीं घूमना चाहिए और वो अभी वन में। तो बिपिन अकेले फिर हूं कही हेतु, इस जंगल में घोर वन में अकेले कैसे घूम रही है। जैसे लगा कि भगवान का सारा शोक दूर हो गया, वो सीता का पता भूल गए, रो नहीं रहे। तो एक तो प्रणाम किए, दूसरे पूछ दिया अकेले क्यों घूम रही है, वे कहाँ है। सती जी अब थोड़े बताने वाले थे कि वो वहां राम नाम जप रहे हैं। अब तो सती बिल्कुल मौन शोक करने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निजय ज्ञान राम परण। अब तो ज्ञान हो गया कि ये भगवान है, लेकिन अब क्या करे, डरते डरते वो गई शिव जी के पास। तो बीच में भगवान ने दिखाया उनको, भगवान ने दिखाया, सती ने देखा कि सीता का हरण हुआ ही नहीं है, राम सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं। फिर बाद में सती ने देखा कि ब्रह्मा शिव दुर्गा आदि सभी राम की सेवा कर रहे हैं, राम पर ब्रह्म है, ईश्वर है, ये सब देख रही है सती। बहुत बहुत बात देखी, तो अंत में आंख मूंद करके रास्ते में बैठ गए। इसके बाद देखी कि राम सीता को खोजते हुए जा रहे हैं। तो गई शिव जी के पास, बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या कहेंगे। तो जाते ही शिव जी पूछे हंसकर, उन्होंने पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। हंसकर उन्होंने कहा कि सती परीक्षा का क्या तरीका था, तुमने किस तरह से परीक्षा लिया भगवान की। तो ये कहती है झूठ बोली, देखिए स्त्री झूठ बोली, भगवान की माया ने झूठ बोला दिया, देवियां कभी झूठ नहीं बोलती। भगवान कहते कहो सत्य सब बात, सब बात कहो और सत्य कहो, कोई छिपाना मत और एक भी बनाना मत। तो ये कहती है कछु न परीक्षा ली न गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी ही ना। मैं कोई परीक्षा नहीं ली, आप जैसे प्रणाम किए थे वैसे मैं भी जाकर के प्रणाम, यही परीक्षा है। ठीक झूठ उल्टा बोल रही है, प्रणाम तो राम किए थे, लेकिन कोई परीक्षा नहीं ली और जाकर के मैं भी प्रणाम की, रास्ते में मेरा मन बदल गया था। और तुम जो कहा सुंदर सा न हो, आप जो कहते हैं वो झूठी बात नहीं है, वास्तव में वो भगवान। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो किन चरित सब जान। तो भगवान शिव तो वो तो प्रिया चरित को समझते थे, कि ऐसी परीक्षा है लेकिन जाकर प्रणाम करेगी, उस समय इतना तर्क कर रही थी और जाकर प्रणाम करेगी, हमारे उपदेश से ज्ञान नहीं हुआ तो कोई रास्ता ज्ञान दे दिया क्या इसको। तो भगवान शिव ध्यान करने लगे, ध्यान में देखे कि ओ ये तो सीता का वेश बनाई थी और ऐसा ऐसा नाटक करके आई। अभी भगवान की माया को प्रणाम किए कि वो सती को झूठ बोलवा दिया, जब कभी जीवन में झूठ नहीं बोली थी। तो इस प्रकार से भगवान की कोई लीला है नहीं, लोग समझ पाते हैं। आज तक ये कहते हैं, दो बात लोग कहा करते हैं, दशरथ के पुत्र हुए तो भगवान कैसे हैं, और अपनी पत्नी को इस तरह खोजते थे आगे की तरह, तो भगवान ऐसा थोड़े करेगा, क्या भगवान पर पाबंदी है, वो नहीं रो सकता है। बताइए, वो रोना ही चाहे भगवान तो उसको कौन रोक सकता है, और जन्म लेना चाहे तो कौन रोक देगा उसको जन्म लेने से, भगवान तो भगवान है। हम भक्तों को भगवान की इन गुह्य लीलाओं को समझना चाहिए, इसका बहुत बड़ा रहस्य होता है। भगवान बहुत रोए हैं, वाल्मीकि रामायण में 10 अध्याय में भगवान के विलाप का वर्णन किया गया, बहुत रो रहे हैं। एक बार तो रोते रोते क्रोध आ गया भगवान को, दिव्य क्रोध, और कहते हैं लक्ष्मण यदि मेरी पत्नी नहीं मिली, मैं अपने पत्नी के साथ नहीं रहूंगा, तब किसी को भी उसकी पत्नी के साथ नहीं रहने दूंगा, मैं सारे संसार को मार डालूंगा, नहीं तो ये देवता सभी खोजे सीता को, अगर हमारी पत्नी को नहीं खोज पाए तो अपनी पत्नी के साथ में नहीं रह पाएंगे। और बाण ऐसे तान लेते हैं, लक्ष्मण जी हाथ से पकड़ते हैं बाण को, धनुष को, कि एक व्यक्ति ने गलती किया है, अब सारे देवताओं को क्यों मारना चाहते हैं, और लोगों ने क्या कसूर किया है, क्या हो गया, क्यों मारना चाहते हैं। तब भगवान सब चुपचाप हो जाते हैं, फिर रोते हैं, 10 अध्याय में कंटिन्यूस विलाप का वर्णन। सीता, मैं समझता कि वन में तुम्हारी ये दशा होती तो मैं अपने पिता की बात की अवहेलना कर दिया होता, मैं नहीं लाया होता, मैं जनक महाराज को क्या उत्तर दूंगा, कई कई का हृदय दुगना हो जाएगा जब वो सुनेगी कि तुम्हारा हरण हो गया या तुम मर गई, ये हो गया, ऐसे भगवान बोलते। जिस समय जनक महाराज के कानों में खबर जाएगी उनकी क्या दशा होगी, पता नहीं तुम किस दशा में हो, कौन राक्षस ले गया, कौन तुमको खा जाएगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत बहुत विलाप का वर्णन है, बड़ा साहित्यिक उत्कृष्ट वर्णन है वहाँ। ये भगवान की लीला हुई, विशेष लीला है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। श्री सुखदेव गोस्वामी हनुमान जी के मुखारविंद से भगवान श्री राम के गौरव की गाथा गाए हैं, भगवान श्री राम के कुछ गुण गाए गए हैं। किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, सबके नेता हैं, तो वे सबको भगवत भक्ति का उपदेश करते हुए भगवान की महिमा गाए हैं। श्रीमद् भागवतम को मुख्य आधार बनाकर भगवान श्री राम के कुछ गुणों का स्मरण किया जाएगा। श्री शुक उवाच, मैं पढ़ रहा हूँ गद्य। किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुष ही अविरत भक्ति ही उपासते। उपासना में क्या मुख्य रूप से कहते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नमो आर्ज लक्षण शील व्रताय, नमो उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय, नमो साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मांड देवाय, महापुरुषाय, महाराजाय नमः इति। इसके बाद कुछ श्लोक बोले। श्री लक्ष्मण गोस्वामी कहते हैं किम पुरुष वर्ष में भगवंतम आदि पुरुषम, आदि पुरुष भगवान की आराधना करते हैं, परम भागवत हनुमान, भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी, सह किम पुरुष, किम पुरुष वर्ष में जितने भी लोग हैं उनके साथ भगवान की भक्ति करते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस सेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि इस पृथ्वी को छोड़कर जितने भी दूसरे वर्ष हैं, दूसरे लोक हैं, वहाँ सर्वत्र भगवान की भक्ति है। भक्ति से शून्य केवल यही प्लैनेट है। सह किम पुरुष ही, किम पुरुष वर्ष के लोगों के साथ परम भागवत हनुमान उपासते, आदि पुरुष भगवान की उपासना करते हैं। उनका और विशेष परिचय देते हैं आदि पुरुष का। लक्ष्मणाग्रजम, लक्ष्मणस्य अग्रजम, जो लक्ष्मण जी से पहले जन्म लिए थे, अग्रज आगे जन्म लिए, पहले जन्म लिए लक्ष्मण जी के बड़े भाई, सीता भी राम, और जो सीता के लिए बहुत ही अभिरमणीय हैं, अथवा सीताया अभिराम, सीता के साथ होने से बहुत सुंदर लगते हैं, ये अर्थ है। ऐसा अकेले भगवान उतना अच्छा नहीं लगते हैं, अपनी प्रिया जी के साथ जब रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण भी प्रिया जी श्री राधा रानी के साथ होकर के ही बहुत अच्छा लगते हैं। कुछ लोगों का ये बहुत ही दुराग्रह रहता है कि राधा रानी को क्यों बगल में बैठा दिया गया, क्या जरूरत है, रुक्मिणी को क्यों नहीं किया गया। कई बार तर्क करते हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं, भगवान की विवाहिता पत्नी रुक्मिणी है उसको नहीं रखते हैं और राधा को लाकर खड़ा कर दिए, क्या आप लोग शिक्षा दे रहे हैं। ना समझ लोग राधा रानी के तत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। सीताया अभिरामम, सीता विरामम, भगवान श्री राम सीता जी के साथ बहुत अच्छा लगते हैं, यह सुखदेव गोस्वामी का वाक्य है। इसके द्वारा सिद्ध हुआ कि भगवान की उपासना उनकी प्रिया के साथ, उनकी शक्तियों के साथ होती आई है अनादिकाल से। भारतवर्ष में एक ऐसा ग्रुप है जो लोग कहते हैं कि राधा रानी या किसी भी स्त्री को भगवान के साथ नहीं रखना चाहिए, वो भगवान को अकेले देखना चाहते हैं ब्रह्मचारी के रूप में। हम शुष्क हृदय हैं वास्तव में, भगवान को समझते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वदा किसी न किसी के साथ रहते हैं, गाय के साथ रहते हैं, मयूर के साथ रहते हैं, चाहे बानर के साथ, सखाओं के साथ, प्रिया जी के साथ, किसी गोपी के साथ, या माँ यशोदा के गोद में। और अकेले तो भगवान भी भूत जैसा क्या करेगा बताइए, किसी भवन में भगवान को कहा जाए आप अकेले रहिए तो भगवान उब कर भाग जाएंगे उस रूम से, हम अकेले क्या करेंगे। स एको अकामयत बहुश्याम, सृष्टि का प्रारंभ है जो हुआ उस समय कहते हैं भगवान ने अकेले थे तो अपने को असंतम इव आत्मानम अमन्यत, अपने को नहीं जैसा अनुभव कर रहे थे, यह उपनिषद का वाक्य है। असंतम इव, भगवान को ऐसा लगे जैसे मैं हूं ही नहीं, तब उन्होंने यह विश्व रचा। प्रश्न होगा कि इसके पहले भी तो भगवान वैकुंठ में रहते हैं और उनके परिकर रहते हैं, हाँ, लेकिन वे भगवान जब अपने को एक्सपेंड किए कारण समुद्र में, तो उन्होंने यह अनुभव किया कि हाय मैं अकेले पड़ गया, अपना घर भी छूट गया और इधर संसार रचा भी नहीं, बीच में फंस गया। वैकुंठ में तो उधर रहते हैं अपने परिकरों के साथ, परमानंद की लीला करते हैं, परंतु कारण समुद्र में वैसा अनुभव कर रहे थे और गर्भ समुद्र में भी कि मैं अकेला हूँ, तब वे सृष्टि किए। इसके बाद भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि गृहस्थ के लिए कि जाल अच्छा कंगाल अच्छा नहीं, जंजाल अच्छा है गृहस्थ के लिए, कंगाल अच्छा नहीं। और साधु के लिए कहते हैं कंगाल अच्छा जंजाल अच्छा नहीं। साधु यदि गरीब है, अकेले विरक्त है तो ठीक है, कंगाल जितना है उतना अच्छा है, और गृहस्थ है कंगाल नहीं चाहिए, उसको जंजाल चाहिए, उसी में उसकी शोभा है। तो भगवान अपनी शक्ति के साथ होते हैं इस प्राकृत जगत में, भगवान अपनी बहिरा